सब लोग बोलिए
करेंगे तीन बार हरी बोल बोल जोर से
हरी बोल हरी बोल हरी बोल
सब लोग बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय सब लोग एकदम जोर से बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः तो आज हम सब लोग यहाँ पर माधव चरण प्रभु के बेटी के पांचवे बर्थडे के उपलक्ष्य में जमा हो गए हैं। हमारे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिसमें उत्सव मनाते हैं। बच्चे का जन्म होता है, उसके पहले 7 महीने का पूजन होता है, फिर जन्म होता है, फिर नामकरण विधि होता है, फिर किसी के घर में उपनयन यानी कि ब्राह्मण संस्कार होता है, उसके बाद हाटे खाड़ी संस्कार होता है, उसको पहले अक्षर सिखाते हैं, 1 साल 2 साल का जन्म गांठ होती है, फिर विवाह संस्कार होता है, बहुत सारे उत्सव है। तो अनेक उत्सव भी है, अनेक संस्कार भी है, और ये संस्कार जो है वो केवल मनुष्य के जीवन में होते हैं, कुत्ते बिल्ली पंछी के जीवन में संस्कार नहीं होते हैं, विवाह संस्कार नहीं होता है, जन्म संस्कार नहीं होता है। तो मनुष्य का जीवन जो है ये संस्कार के लिए बनाया गया है। क्यों संस्कार के लिए बनाया गया है? क्योंकि मनुष्य जीवन में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान कौन है, हम कौन हैं, ये हम जान सकते हैं, हमारा उनका रिश्ता क्या है ये जान सकते हैं, हम उस रिश्ते को कैसे बना सकते हैं ये जान सकते हैं, वो रिश्ते को बनाकर उनकी सेवा में लग सकते हैं, उनकी सेवा में लगकर अंतिम भगवान के धाम में जाने का अवसर इसी जीवन के अंत में प्राप्त होता है। और किसी भी जीवन के अंत में ये मौका नहीं मिलता है। हर एक जीव के जीवन के अंत में दोबारा जन्म लेना पड़ता है, फिर दोबारा बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, जन्म का दुख भोगने के लिए फिर दोबारा आना पड़ता है। ये एक ही जीवन है हम सबका। हाँ, चाहे हम लोग कोई 5 साल का है, जैसे वृंदा 5 साल की हो गई आज, या हम लोग कोई 25 साल के हो गए, कोई 50 साल के हो गए, कोई 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, है ना। तो कितने भी साल के हो गए फिर भी ये जीवन में ये मौका है कि हम भगवान को मिल सकते हैं। भगवान को मिलने के लिए ये हमको जीवन दिया है। चाहे हम विरार में रहने वाले हो, पालघर में रहने वाले हो, या पेडर रोड पर रहने वाले हो, या दिल्ली में रहने वाले हो, या पढ़े लिखे हो, या गरीब हो, या अमीर हो, या अच्छे दिखने वाले हो, अच्छे दिखने वाले नहीं हो, गोरे हो, काले हो, लंबे बाल वाले हो, छोटे बाल वाले, किसी भी तरह के हम अगर मनुष्य हैं हम लोग, तो हमें भगवान को मिलने का मौका है, और किसी भी जीव को नहीं है। और एक और विशेष बात उसमें ऐसी है कि जब भी कोई उत्सव मनाने जैसी घटना होती है, जैसे ये भी बेबी का बर्थडे है, आगे बेबी की शादी का समय आएगा, है ना, या और कोई उत्सव होगा, कोई डिग्री प्राप्त करेगी कोई, या कोई पुरस्कार प्राप्त करेगी, तो ये उत्सव का समय जब होता है, जैसे हम मनाते हैं इसको, संपन्न करते हैं, उत्सव आयोजित करते हैं, उसको लोगों को बुलाते हैं, तो उस उत्सव में भगवान की याद करना, भगवान के विषय में सत्संग करना, ये बहुत पुण्यकारी होता है। अब ये बर्थडे को हम ऐसे ही डिस्को डांस करके भी कर सकते हैं ना, म्यूजिक लगा सकते हैं, नाच सकते हैं, आदमी औरत हाथ पकड़ के नाच सकते हैं, केक काट सकते हैं, अंडे वाला दारू पी सकते हैं। लोगों को तो यही चाहिए आजकल, इसके बिना कोई फेस्टिवल होता नहीं उनका, चाहे नवरात्रि हो या गणपति हो, ताश खेलना और शराब चाहिए उनको, उसके बिना उत्सव नहीं होता है कोई। लेकिन वो हमको अधोगति में नरक की ओर लेके जाने वाला कार्य है। ऐसा कार्य करने से हम लोग नरक की ओर प्रगति करते हैं, मतलब अधोगति, प्रगति नहीं करते। लेकिन हमारा जीवन में कोई भी उत्सव हो, उसमें अगर भगवान के लिए हम सत्संग करते हैं, भगवान के विषय में भगवान का नाम पुकारते हैं, तो वो उत्सव बहुत परिपूर्ण हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, भाग्य का उदय होता है, दुख निवारण होता है, आनंद की वृद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता है, हृदय का शुद्धिकरण होकर भगवान के और पास हम चले जाते हैं। और जिसके लिए उत्सव मना रहे, कि जिसका बर्थडे है फॉर एग्जांपल, किसी की शादी की सालगिरह है, उन लोगों को सत्संग करने से उनके इस दिन में बहुत आध्यात्मिक लाभ होता है। तो इसलिए बच्चे को जानते नहीं उनका बर्थडे कैसा होता है, क्या होता है, उनके जन्म दिवस पर जब हम सत्संग करते हैं तो बर्थडे वाले बालक को आशीर्वाद प्राप्त होते हैं भगवान के, संतों की कृपा प्राप्त होती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और एक संस्कार भी मिलता है। क्या संस्कार मिलता है? जन्मदिन का मतलब सत्संग होना चाहिए, ये बचपन से मन में बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि जन्मदिन मतलब डिस्को होना चाहिए। ऐसा अगर संस्कार देंगे बचपन, उनको तो पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, माँ बाप जैसा अरेंज करेंगे वही बेस्ट है उनके लिए। तभी बच्चों को संस्कार भी हो रहा है कि मेरा बर्थडे है, मतलब कोई आया है, उनसे कृष्ण कथा होगी, भगवान के लिए श्रृंगार होगा, भगवान को भोग लगाया जाएगा, वो केक लाएंगे, उसको भगवान को भोग लगाया जाएगा, फिर प्रसाद बटेगा सबको, फिर कीर्तन होगा, भगवान की कथा होगी। ये बच्चे ने एक बार देख लिया तो आगे भी बर्थडे को वही बोलेंगे, ये बर्थडे में कोई बुलाया नहीं सत्संग करने के लिए, ये बर्थडे में कीर्तन नहीं किया, भक्त लोग नहीं आए। देखो कितने लोग तिलक लगा कर आए यहाँ पर। तो बालक पर कितना संस्कार अच्छा है कि हमारे जन्मदिन पर सब भक्त लोग आते हैं, एक साथ बैठते हैं, मेरे जन्मदिन के ऊपर भगवान की कथा होती है, सबको प्रसाद बांटते हैं, भगवान को श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे बालक के सामने हम लोग क्या क्या उदाहरण रखते हैं, ये उसके आगे की जिंदगी बनने वाली है। आज उनको अगर हम कम से कम कपड़े पहनने को सिखाएंगे तो आगे जाकर वैसे ही कम से कम कपड़े पहनेंगे, तो समाज भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमको बचपन से उनको संस्कार देना चाहिए, संस्कार के लिए जीवन बनाया है। आज हम जो भी कुछ हैं, अच्छे बुरे जो भी कुछ हैं, हमारे बचपन में जो भी हमको सिखाया गया माँ बाप के द्वारा, वैसे आज हम हैं। आज हम जो कुछ हैं, स्कूल में क्या बोलते हैं, ये किसका बेटा है, ये जैसे आई वाले कौन है, है ना, सारा बिल माता पिता पर जाता है, और फर्स्ट आएगा तो इसके माता पिता कौन है पूछेंगे, अच्छे के लिए पूछेंगे, बुरे के लिए भी पूछेंगे। तो हमारा जो परिचय है वो हमारे माता पिता के द्वारा बनता है। ऐसा हमारे बालक होने चाहिए कि हमको ऐसे पहचान होनी चाहिए कि ये इनके माता पिता हैं। जैसे प्रधानमंत्री के बनने के बाद में पूछेंगे इनके माता पिता कौन है, ये प्रधानमंत्री के माता पिता हैं, ये प्रधानमंत्री के पड़ोस में रहते हैं, ये प्रधानमंत्री के ऑफिस में काम करते हैं, उनसे हमारी पहचान बनती है। हमारे बच्चे ऐसे भक्त बनने चाहिए कि उनकी महानता देखकर लोगों को पूछने का मन करना चाहिए कि इनके माता पिता कौन है, किन्होंने इनको जन्म दिया, इतना संस्कार दिया, इतने बड़े महात्मा बनाया। लेकिन वो अगर ऐसा करना है तो बचपन में तो हमको देना पड़ेगा ना बाल कड़ू, भक्ति का तो देना पड़ेगा ना, तो आगे जाके संत बनेगा। बचपन से अगर वो देखेगा शराब पी रहे हैं सब लोग, सीढ़ी सिगरेट पी रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो बड़ा होकर क्या बनेगा, वो वही बनेगा जो बचपन में देखा है उसने। जो आदर्श हम दिखाएंगे उसको वो करेगा, वो उसको पता नहीं दुनिया में ऐसे आ करके आया, वो हमको रास्ता दिखाना है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सही है ये गलत है, यहाँ पर जाना चाहिए यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ये जाने से कल्याण होगा, ये यहाँ जाने से नरक में जाएगा। नरक की व्याख्या करनी सिखानी चाहिए उनको, नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, भगवान का धाम क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, राक्षस कौन होते हैं, ये बताना चाहिए उनको, अच्छा क्या है बुरा क्या है बताना चाहिए, हमारा फर्ज है। हम लोग कुत्ता बिल्ली पंछी नहीं है कि हमारे बच्चे जन्म देते हैं, 6-7-8 बच्चे जन्म देते हैं, ऐसे ही पलते हैं और एक दिन मर जाते हैं, मनुष्य के बालक हैं हम। तो 5 साल, जब श्री कृष्ण भगवान के 5 साल हो गए तो क्या हुआ, क्योंकि हमारे बर्थडे बेबी का भी 5 साल हो गया आज, तो 5 साल तक भगवान ने छोटे गायों को चराया, बछड़ों को चराया, बेबी काउज। तो कैसा नियम था उस समय, नंद बाबा यशोदा माई जो स्मॉल स्मॉल बेबीज, जितने बेबी थे काऊ गाय के बछड़े थे, उनको घुमाना है, उनको वो भी छोटे थे उस समय, तो इतना ही दूर घुमाना है कि पर्वत के ऊपर जो घर है उनका, जैसे हम लोग कभी गच्ची पे आए ना हम लोग, तो गच्ची से हमको थोड़ा दूर तक दिखाई पड़ता है, तो कितना दिखाई पड़ेगा वहाँ तक जाना है, उसके पीछे जाना नहीं है, आगे जाना। जब भी माता का दिल करेगा तो जाएगी छत पे, खड़ी रहेगी, चारों ओर देखेगी किधर है, दिखना चाहिए पश्चिम की ओर है, उत्तर की ओर गया है, पूर्व की ओर गया है, वो दिखता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी था यहाँ पर, अभी पता नहीं कहाँ आगे कहाँ चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ही अंतर उनको लिमिट दिया गया था। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे कि कल कृष्ण का 5वां बर्थडे है, तो आज के दिन वो जो बच्चे चराने गए थे, सब लोग ध्यान से सुनो, बच्चे लोगों के लिए अच्छी कहानी है, बैठो इधर आके बैठो, कहानी सुनो कृष्ण भगवान की, भगवान के 5वें बर्थडे पे क्या हुआ सुना रहा हूं, आयो सब लोग आ जाओ बैठ जाओ। हमारा 5वां बर्थडे तो बहाना है, भगवान का 5वें बर्थडे के बारे में सुनना है। बैठो। तो कल बर्थडे है, तो आज क्या हो रहा है, बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो बाकी फ्रेंड लोग क्या बोलते हैं, अरे देखो कन्हैया, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पापा मम्मी को विश्वास ही नहीं है, इतना बड़ा हो गया तू, अभी भी बछड़े को दे रहे चलाने के लिए, बड़ी गाय का जिम्मेदारी नहीं दे रहे तेरे को अभी तक, क्योंकि तुझ पर बाबा को विश्वास नहीं है अभी तक कि तू कर पाएगा इसको। अच्छा, एक ने बोला ठीक है, दूसरा वहां से आए वो बोला, अरे कन्हैया तू इतना बड़ा हो गया, अभी भी तुमको छोटी छोटी गाय दे रहे हैं, यहाँ यहाँ घुमा रहे हैं, दूर जाने को देते नहीं है। तो ठीक है, दूसरा बोला, अरे तीसरा बोला, चौथा बोला, सौवा बोला, पांचवा बोला, सब लोग बोले क्या आज होलसेल में बोल रहे हैं, सब लोग क्या बात है, परेशान हो गया अभी देखो। एक आदमी बोला ठीक है, अगर सब लोग वही बोलने लगे तो बेचारा बालक दुखी हो गया, वो उसको वो हकीकत में लगने लगा कि मेरे पापा पिता को मेरे पर विश्वास नहीं है, इसलिए मेरे को छोटे छोटे बच्चे दे रहे हैं, वो दूर जाने का नहीं बोल रहे हैं, तो रोने लगता है कृष्ण भगवान, बहुत रोते हैं, सब लोग हंसते भी हैं उसको और बोलते भी हैं हर तरफ से, आज खेलने में मज़ा नहीं आ रहा है, बछड़े चराने में आनंद नहीं आ रहा है, सब लोग टोक रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ताने दे रहे हैं। तो शाम को आते ना, तो जब शाम को आते हैं रोज घर पे, तो कैसा होता है, सब गोपियाँ खड़ी रहती है, आरती का थाली लेके खड़ी रहती है, औक्षण करती है उनका, हाँ दीपक घुमाती है, मिठाई खिलाती है, उनको गोद में बिठाते हैं, तो मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर घर पे लेके जाते हैं, फिर स्नान कराते हैं शंख से, फिर लोरी गाते हैं, फिर दूध पिलाते हैं, फिर सुला देते हैं उनको, फिर सुबह उठा देते हैं, ऐसा कितना विधि है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि घर पे आया सो गया, ऐसा नहीं। लेकिन उस दिन इतने नाराज होकर लौटे कन्हैया जी, सीधे गए घर पे, कोई आरती नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, स्नान नहीं, कुछ, सीधा बिस्तर पे गए, उल्टा मुंह करके सो गए। बच्चे कैसे होते हैं ना, गुस्सा करते उल्टा मुंह करके सो जाते, नहीं बात करना किसी से, अरे लोरी सुना रहे नहीं सुन रहे हैं, कुछ खाना खिलाने नहीं सुन रहे, स्नान करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो बहुत नाराज है, और पता नहीं क्यों नाराज है, सब लोग चले गए, ये भी चले गए। अब इधर क्या हुआ, जब ये जंगल में पास में गाय चरा रहे थे, तो घर में क्या बात हो रही है मैया बाबा की, अरे हमारा कन्हैया बड़ा हो गया, अभी बहुत, कल उसका 5वां बर्थडे है, अभी उसको बड़े गाय का जिम्मेदारी देना चाहिए, ऐसा घर में डिस्कशन हो रहा है, लेकिन जंगल में मालूम नहीं क्या चर्चा हो रही है घर पे। तो ये उनको सोच रहे कि घर पे आ गए तो उसको गुड न्यूज देंगे, गुड न्यूज कि तेरा कल 5th बर्थडे है, तो कल तुझे सभी बड़ी गायों का जिम्मेदारी देने वाले हैं, वो सब बताने वाले भी है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, बड़े गायों को क्या क्या चराना है, कौन से वन में जाना है, सब गाइड करेंगे आपको, फिर दूर जाएगा इसलिए रास्ते में और गोपियों को भेजेंगे दोपहर के टाइम पे लंच बॉक्स लेके, सुबह तो खिला के भेजेंगे मक्खन वगैरह, लेकिन दोपहर में जाएंगे क्योंकि दूर जाएगा ना बेचारा, तो दूर वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर भी लंच जाएगा और शाम तक लौट के आएंगे, नहीं तो बच्चों को लेके लंच के लिए लौट के आते थे, अभी शाम को लौट के आएंगे, ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा बताने वाले हैं, लेकिन बच्चा तो बात ही नहीं कर रहा है, सीधा जाके सो गया, कब बताने का गुड न्यूज उसको? चलो भाई ठीक है, रात को सो गया, सुबह उठेगा बात करेगा। सुबह उठा रहे लोरी गा के उठाते हैं उनको, गीत गा के उठाते हैं, और वो भी जैसे ही लोरी गाते हैं ऐसा जंप करता है बिस्तर से, एकदम कूद के उठता है, और कूद के उठ के पहले बांसुरी बजाता है, उसकी बांसुरी सुनकर सब ग्वाल बाल उठ जाते हैं जहाँ जहाँ सो रहे, वो भी जंप करते हैं पूरा, फटाफट स्नान करते हैं, भाग के आते हैं, उस समय ये भी रेडी वो भी रेडी, चलो चलते हैं गाय चराने के लिए। अरे आज तो 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बजे, फिर भी उठने को तैयार नहीं है। यहाँ से लोरी गाई जा रही है, इधर से लोरी गा रहे हैं, कोई असर ही नहीं है। ऐसा है ना, जो सोया हुआ होता है ना उसको उठाना आसान होता है, जो सोने का नाटक करता है ना उसको उठाना मुश्किल होता है। जो जगा है लेकिन सोने का नाटक कर रहा है उसको कोई जगा नहीं सकता है। ये तो बिल्कुल जगे हुए हैं लेकिन गुस्सा है मन में, इसलिए उनको यहाँ से लोरी गा रहे तो उधर मुँह कर। अभी करे क्या, आनंद बाबा डिस्कस कर रहे हैं क्या करें, अभी कितना देर हो गया है, सब लोग तैयार होके आ गए क्योंकि बांसुरी बजी नहीं आज, तो सबको आश्चर्य होगा क्या हो गया। चलो कोई बात, सूरज तो ऊपर आ गया, भागो अभी, घर पे आके जमा हो गए सब लोग, और इतनी बड़ी 9 लाख गाय भी जमा हो गई, वो भी लाइन में खड़ी है, क्योंकि उनको तो न्यूज़ मिल गया था ना कि हमको कल जाना है। अभी तो बच्चे जाते थे, अभी कल से हम जाएंगे, सब गाय भी खुश है, बैल भी खुश है, सब लोग अलग अलग रंग के हैं, सफ़ेद रंग के हैं, भूरे रंग के हैं, धब्बे वाले हैं, तिलक वाले हैं, काले रंग के हैं, अलग अलग टाइप के 108 झुंड हैं गाय के, कड़प बोलते हैं उसको, 108 टाइप के नाम है उनके, मृदंगिनी, कतिलकिनी, बहुत सुंदर सुंदर, धौरी, कमरी, कारी, गौरी, गिनते हैं बोट पे आगे जाकर। इतना सब तैयारी हो गया, सब बाहर सज धज के आ गए, सभी गाय के ऊपर ब्लैंकेट मतलब चादर डाला हुआ है, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, पैर में घुंघरू बांधे हुए हैं, पूंछ को मोरपंख बांधे हुए हैं, सिंह पर सिंह सोने के मुकुट लगाए हुए हैं, तिलक लगाया उनके ऊपर, हाथ के छप्पे लगाए कुमकुम लगा के, ऐसा पूरा सजा सजा के 9 लाख गाय, सारे ग्वाल बाल खड़े हो गए हैं, लेकिन कन्हैया अभी तक उल्टा मुँह करके बिस्तर पे सोया हुआ है। अभी करे क्या, तो बाबा बोलते हैं जाओ उसके कान में बोल देना कि आज तुमको बड़ी गाय का जिम्मेदारी देने वाले हैं, तेरा 5th बर्थडे है ना आज। तो जैसे ही माता आके बोलती है कि सारी गायें तैयार खड़ी है, आज से तुझे बड़ी गाय का, बड़ी गायों का जिम्मेदारी देना है, सब 9 लाख गाय सारे ग्वाल बाल सज सज के तैयार हो गए, तो भी सो रहा है अब तक, उठो, तो जंप करता है एकदम। उस दिन सारी चीज़ एक्सप्रेस में हो जाती है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस बात, एक्सप्रेस ड्रेसिंग, एक्सप्रेस ब्रेकफास्ट, भाग आते भाग के एकदम, देखते रहे वाह क्या बात है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब तुमने बोलने का मौका ही नहीं दिया, शाम को जाके सो गया, तो कब बोलेगा, सोच रहे कब बोलना है तुम्हें, इतना नाराज क्यों हो गया है। तो बताता है कल मुझे बच्चों ने बहुत चिढ़ाया, मुझे लगा आपको मुझे विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं चलो अभी चलते हैं, देर हो गई अभी। तो फिर लेक्चर होता है, कैसे चलना है, कहाँ जाना है, ये सब 5th बर्थडे का डिस्क्रिप्शन है, हाँ ध्यान रखना। तो भैया बोलती है अभी देखो बाबा बेटा तुम दूर जाओगे, अभी दूर दूर धूप लगेगी, पत्थर लगेंगे गाय में, जमीन पे कांटे लगेंगे, क्या क्या लगेगा, पैर बहुत कोमल है तुम्हारे, तो ये 2 जूता जोड़ी, जूता मतलब कृष्ण के लिए और बलराम के लिए, 2 जोड़ी जूता और 2 छतरी, ये आपको लेना है और चलना है। तो कन्हैया कहते हैं आपने मेरे गाय के लिए भी जूता दिया क्या, गाय के लिए छतरी दिया क्या? बोले 9 लाख छतरी और 36 लाख जूता, एक गाय के कितने पैर होते हैं हमारे 2, उनके 4 होते हैं ना, तो 4 जूते एक गाय के लिए, 9 लाख गाय, कितना जूता हो गया, 36 लाख जूता हो गया, और 9 लाख छतरी हो गया। बोले मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारे लिए खाली है। बोले अगर मेरे गाय के लिए जूता नहीं है, छतरी नहीं, तो मैं भी जूता और छतरी धारण नहीं करूँगा। कितना प्रेम है गाय के ऊपर, देखो गाय का तो नेचुरल जूता होता है ना बहुत हार्ड हार्ड, पैर गिरेगा तो दुख टूट जाएगा अपना हड्डी, इतना हार्ड होता है उसका, फिर भी वो चाहते हैं कि अगर मैं जूता पहन रहा हूँ तो उनको भी जूता पहनना चाहिए, मैं छतरी पहनूंगा धूप से बचूंगा तो उनको भी धूप से बचना चाहिए, इतना प्रेम हमारा संस्कृति में है गाय के प्रति, और उसी गाय को हम लोग पूजा करते हैं, उनके चरणों की पूजा करते हैं, उनको भोजन करते हैं, उनका दूध पीते हैं, उनको देवताओं का निवास मानते हैं, और आज उन्हीं गाय को लोग मार के खाते हैं। कितना समाज गिर गया, कहां से कहां पहुंच गया, इतना पापी समाज हो गया है। जो जो जीव जो प्राणी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसके लिए भगवान ने क्या नहीं किया, 33 करोड़ देवताओं को निवास दिया, लक्ष्मी जी लेट आई, बोले मैं कहां रहूं, तो लेके जगह बाकी है, पीछे के भाग में जगह बाकी है। लक्ष्मी जी बड़े आनंद से गई वो, और पीछे के भाग से जो गिरेगा उसमें भी वो लक्ष्मी देवी है गोबर में। इतना गाय का महिमा है। श्रीरंगम मंदिर में हर सवेरे मंगला आरती होने के पहले सबसे पहले वहां एक गाय रखी हुई है, एक विशेष गाय, उसका पीछे का हिस्सा भगवान को दिखाते हैं, मतलब क्या लक्ष्मी दर्शन कराते हैं, तब भगवान दर्शन देते हैं भक्त सबको, पहले खुद लक्ष्मी का दर्शन करते हैं। इतनी गाय महान है, बोलो आप, उसके दूध में आपको आध्यात्मिक उन्नति देने की शक्ति है, उसके गोबर में लक्ष्मी का निवास है। आप घर में अगर उसके गोबर का धूप लगाओगे शाम को तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी, ऐसा है गाय। एनीवे तो भगवान ने मना कर दिया, तो माने कहा लेना है तो ले लो, मेरे पास तो दो ही है, दो जोड़ी जूता, दो जोड़ी दो छतरी, तो भगवान रिजेक्ट कर देते हैं उसको, नहीं चाहिए। तो अभी क्या गाय सुन रहे सब लोग, ऐसा नहीं कि गाय को समझता नहीं, सब गाय सुन रहे हैं कि हमारे कन्हैया और बलराम जी नंगे पैर चलेंगे, हमारे पैर तो बहुत हार्ड है, सख्त हैं, हमको तो कुछ नहीं होगा, इनको तो लगेगा। तो जब ये डिस्कशन हो रहा है और लग रहा है कि कन्हैया मानने वाले नहीं है, तो सारी गाय मीटिंग करते हैं, अरे बाप रे हमारे लिए नंगे पैर चलेंगे, चलो चारों दिशा में जाते हैं और जितने भी चारों दिशा में जहां जहां भी पत्थर कंकड़ जो भी कुछ है उसका पाउडर बना देते हैं, क्योंकि पता नहीं ना उत्तर में जाएगा दक्षिण में जाएगा कौन से वन में जाएगा, जहां भी जाएगा वहां पर सब जगह पाउडर होना चाहिए, पाउडर मुलायम एकदम, जहां भी चलेगा तो मक्खन जैसा मुलायम लगना चाहिए। तो कुछ ही समय में 9 लाख गाय चारों दिशा में जाकर पत्थर को कूट कूट कर अपने पैरों से कूट कूट कर एकदम टलकम पाउडर जैसा बना देते हैं, मुलायम एकदम, कहीं भी पैर रखेंगे तो मुलायम लगेगा। ऊपर से क्या करते मालूम है, अपने थन, उनके थन जितने बड़े होते हैं इतने, भाई गाय जब खुश होते हैं ना तो उसके थन बहुत बड़े हो जाते हैं, और जब गाय बहुत खुश होती है तो उसके थन से दूध टपकते रहता है दिन भर। और ये गाय कृष्ण की गाय है, नंद बाबा की गाय है, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती हैं, और कृष्ण बारे में सोचते सोचते उनके थन में से दूध निकलता है। जैसे कोई मैया है, आप में से कोई माता है, उसका नया नया बालक है, जैसे उसको बच्चे की याद आती है तो स्तन से दूध निकलता है, प्रेम की वजह से, प्रेम का लक्षण है वो, बच्चा की याद आते ही तुरंत दूध निकलता है। तो ये अपने टपकते हुए दूध से वो जो मुलायम टलकम पाउडर जैसी मट्टी बना के रखी है उस पर सिंचन भी करते हैं दूध का, तो ठंडा मुलायम मक्खन जैसा जमीन बन जाता है, इसको बोलते हैं प्रेम। जैसा प्रेम भगवान कर रहे हैं वैसे गाय भी भगवान पर प्रेम कर रही है, नहीं भगवान के मक्खन जैसे मुलायम चरणों को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए इतना मेहनत करके या सब कुछ बना के दूध का सिंचन करके ठंडा ठंडा मुलायम मुलायम जमीन बना के वापस आके लाइन में खड़े रहते हैं। और एक मीटिंग करते हैं, कौन मीटिंग करते हैं, सारे ग्वाल बाल और गाय मिलकर ऐसे मीटिंग करते हैं कि अभी हमने इतना मुलायम और गीला बना दिया है, अभी पैर रखेंगे तो निशान आएगा, निशान आएगा कि नहीं आएगा, सूखा पे निशान नहीं आएगा, लेकिन गीला बना के रखा तो निशान आएगा, यहाँ पैर रखेंगे तो यहाँ निशान आएगा, आगे रखें तो आगे आ जाएगा, और आप दूर तक चलेंगे तो दूर दूर तक निशाने बनेंगे दो पैरों के कृष्ण बलराम के, हम में से कोई भी उन पर पाँव नहीं रखेगा, जहाँ पर उनका पाँव का निशान गिरा हुआ है उस पर दिव्य चिन्ह होंगे, मछली होगी, अंकुर होगा, अंकुश होगा, बाण होगा, बहुत सुंदर सुंदर चिन्ह है, स्टार होगा उसके ऊपर, दोनों के पैर पर अलग अलग चिन्ह हैं, उन्हीं चरणों के चिन्हों से ब्रज भूमि सुशोभित रहती है हमेशा, ब्रज के भूमि का यह अलंकार है कृष्ण भगवान और बलराम जी के चरणों का चिन्ह। तो कहते हम उसको मिटाएंगे नहीं, हम उस पर चलेंगे नहीं, हम बाजू से चलेंगे। पूरे ब्रज में उस समय भगवान के चरणों के चिन्ह बना करते थे, क्योंकि भगवान चला करते थे, उनको देखकर गोपियां रोती थी, जब भगवान चले गए ना मथुरा में तो जहां जहां चरण चिन्ह बने हुए हैं उनको देख कर रोती थी, वो याद करती थी उनको, जब से इतने से थे फिर इतने हो गए, फिर इतने हो गए, ऐसे सारे प्रकार के चरण चिन्ह वहां पर रहा करते थे ब्रज में। और 10 साल तक चरण चिन्ह बने, 100 साल दूर गए वो, तो 100 साल तक वो चरण चिन्ह को देखकर रोती थी उनको याद करते हुए। माता इतने से पैर को देखकर रोती थी और गोपियां बड़े पैर को देखकर रोती थी, अपने अपने संबंध के अनुसार। तो फिर चले गीत गाते हुए, मुरली बजाते हुए, आराम से चल रहे हैं, दूर दूर वन तक गए, शाम तक घूमे, सब ग्वाल वाले ने बड़ा आनंद लिया। जमुना किनारे गए, जंप किया पानी में जमुना किनारे में, दोपहर का लंच आया ढूंढ ढूंढ के, वहाँ पर बैठे गोलाकार, वहाँ भोजन किया और गीत गाए, कोई मेंढक बना, कोई पक्षी का आवाज़ किया, कोई पेड़ से कूदा, कोई नीचे गया, कोई ऊपर आया, कोई पानी में कूद के बाहर आया, भोजन किया, हाथ धोया। शाम हो गई तो पहले दिन बहुत दूर चले गए इसलिए उनको थकान हो गई कृष्ण भगवान। साधारण है ना भाई, रोज दोपहर को वापस लौट के आते थे, अभी तो शाम तक लौट के नहीं आए, तो दूर गए इतना, कई किलोमीटर चलते थे। लौटते समय कन्हैया थक गए। वे ग्वाल बालों ने सोचा आज तो बड़ा आनंद आया, इतना दूर चले गए हम लोग, ऊपर से हमने कन्हैया को कल चढ़ाया था बहुत, आज तो इमीडिएटली उसको बड़ी गाय का जिम्मेदारी दिया गया, तो आनंद भी बहुत आया, गाय भी बड़ी खुश थी, कृष्ण भी बड़े खुश थे, सब लोग खुश थे, लेकिन थक जरूर गए। तो ग्वाल बालों ने सोचा कि अगर हम घर जाएंगे और घर पहुंचते समय मैया को कन्हैया का थका हुआ चेहरा दिखेगा तो बोलेगी कल नहीं भेजूंगी, इतना दूर क्यों भेजूंगी, तो इतना थक के आया बेचारा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर हमको कल इतना दूर जाने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब घर पहुंचने का समय आएगा तो ये हंसता हुआ दिखना चाहिए, थका हुआ दिखना नहीं चाहिए। तो जैसे ही नंदगांव पास में आया तो उन्होंने गीत गाना शुरू किया, जोक्स बोलना शुरू किया, मजाक करना शुरू किया, क्या क्या बोलना शुरू किया, इसको कोई मतलब नहीं, लेकिन हंसने के लिए हंसते, बच्चे कैसे होते हैं ना, कुछ भी बोल के हंसते रहते हैं। जैसे पास आने लगे तो कन्हैया को बड़े बड़े गीत गीत सुना सुना कर, जोक्स बोल बोल कर हंसाने का आरंभ किया। तो मैया तो दूर से देख रही है कब आएगा, सूरज दिखते ही आया कि नहीं, अरे कब आएगा कब आएगा, दूर से धूल दिखती है धूल, तो मतलब आ रहा है आ रहा है। तो पहाड़ से उतर के भाग के नीचे आती कि मैं वो ऊपर चढ़ने तक रुक नहीं पाऊंगी, बड़ी देर से आ रहा है, तो देख रहा है वहां है दूर, तो उधर से हम नीचे आके खड़े हो जाएंगे, सब आरती वाद सब नीचे लेके जाएंगे और वहीं उसको मिलेंगे, फिर तो उससे बातें करते करते फिर ऊपर आ जाएंगे। तो वो लोग नीचे उतर जाते हैं, तो नंद गांव के पास में, वृंदा कहानी सुनना है ना आपको, नंदगांव पहुंचने के बाद में वहां पर एक पेड़ है बड़ा, कदम का वृक्ष है उधर, उसको कहते हैं टेर कदम्बा, उस पर भगवान चढ़ जाते हैं लास्ट में और मुरली बजाते हैं, और मुरली बजाकर मुरली के धुन में हर एक गाय को नाम से पुकारते हैं, जैसे कि धुन तो एक बज रही है लेकिन इसको सुनाई पड़ रहा है शैलेश, उसको सुनाई पड़ रहा है प्रमोद, इसको सुनाई पड़ रहा है महेश, एक धुन बज रही है लेकिन आपको उसका आपका नाम सुनाई पड़ रहा है, हर एक व्यक्ति का आपका नाम सुनाई पड़ रहा है, ऐसे धुन बजाते हैं सबसे ऊपर बैठकर। तो सब गाय जो है ऐसे कान ऊपर करके सुनते हैं, अरे कन्हैया मुरली बजा रहे हैं, भाग के उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं। कुछ गाय जो है सुनते हैं लेकिन नहीं सुना ऐसा करते हैं, उधर ही खड़े रहते हैं, फिर बाकी सारी गाय आ जाती है, कुछ गाय बच जाती है, तो कन्हैया उतरते हैं उन गाय के पास जाते हैं और हाथ पकड़ के उनको लेके आते हैं, मतलब सप्ताह भाग के खुद लेके आते हैं पर्सनली, फिर सारी गाय इकट्ठा होती है, फिर कन्हैया खुद मुरली बजाते हैं और मुरली बजाते बजाते फिर घर पहुंचते हैं, एकदम हंसते हुए खेलते हुए आनंद लेते हुए। मैया को बड़ी खुशी होती है कि मेरा बेटा जो है बड़ा प्रसन्न होकर घूम के आ रहा है, मैं कल भी भेजूंगी उसको, रोज ऐसा आनंद करके आएगा तो अच्छा है। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान का 5वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। आज भी नंदगांव में गोपाष्टमी का दिन, गोपाष्टमी का दिन अभी आएगा 18 नवंबर को, अभी कल से दामोदर मास कार्तिक मास शुरू हो रहा है, कल शरद पूर्णिमा है, कल के दिन भगवान ने रास रचाया, देखो पूर्ण चांद है ना, पूर्ण चांद को देखकर भगवान बहुत उत्साही हो गए, उन्होंने बंसी बजाई, सब गोपियों को बुलाया और रात भर रास नृत्य किया। तो वैसे अनेक उत्सव इस महीने में आएंगे। ये उत्सव जो है ना बहुत, ये महीना जो है वो उत्सव से खचाखच भरा हुआ है। इसी महीने में भगवान ने गोवर्धन को उठाया था 7 दिन 7 रात। इसी महीने में भगवान ने अलग साल में नरकासुर को मारा था। इसी महीने में भगवान ने गिरिराज का पूजन भी किया था, पहले पूजन किया था फिर उठाया था उसको। इसी महीने में राधा कुंड का आविर्भाव हुआ है। इसी महीने में तुलसी का विवाह होता है। कितने उत्सव है, बहुत सारे उत्सव। इसी महीने में भगवान ने दिवाली के दिन भगवान को और यशोदा मैया ने बांधा था उखल से, दामोदर लीला कहते हैं उसको। मक्खन चुराया था तो पकड़ा था उनको, पकड़ के उखल से बांध दिया था, दंड दिया था उनको। आज भी उसके बारे में गीत गाते हैं कि भगवान को, भगवान ने माखन की चोरी की इसलिए पकड़ के उनको बांध दिया गया। भगवान चोरी भी करते हैं तो उसका गुणगान करते हैं, है ना। भगवान एक बार युद्ध से भाग गए थे तो रणछोड़ दास का मंदिर है गुजरात में, अभी भी पूजन करते हैं और गुणगान करते हैं उनका, क्योंकि अपने पुकारते हुए भक्त को बचाने के लिए वो रण से भाग गए थे। ऐसा नहीं डर के नहीं भागे थे, उनको रुक्मिणी पुकार रही थी, मेरा जबरदस्ती शादी जो है वो शिशुपाल से करने जा रहे हैं और मैं, मेरा हृदय तुमको दे चुकी हूँ, जल्दी आके मुझे बचा लो। तो भगवान द्वारका से युद्ध छोड़कर रातों रात भाग के आते हैं, कोई मुझे पुकार रहा है, और रुक्मिणी को लेकर जाते हैं और शादी करते हैं उससे। ऐसे भगवान के बहुत सुंदर सुंदर लीला जो है वो ये महीने में हुआ है। तो इसी महीने में दूसरे पक्ष में अष्टमी के दिन, उसको कहते हैं गोपा अष्टमी, उस दिन भगवान को 5 साल होने के बाद में बड़े गायों का जिम्मेदारी दिया गया था। आज भी उस उत्सव को भक्त लोग बनाते हैं। एक बहुत विशेष बात होती है इस दिन जो मैं बताने को भूल गया आपको। जब भगवान जाने लगते हैं गाय को लेकर, शुरुआत करते हैं जाने के लिए, तो सारी गोपियां जो है ना अपने घाघरे को उठाकर भाग भाग के आती हैं। घाघरा बहुत लंबा होता है ना, धीरे धीरे चलने के लिए ठीक है, फास्ट चलना होगा तो पैर में फिसलेगा वो। तो सारी गोपियां अपने घाघरे को उठाकर भाग भाग के आती है कि कन्हैया कैसे लग रहे हैं बड़ी गायों के बीच में देखने के लिए। तो आज भी हमारे मंदिरों में उस दिन गोपाष्टमी के दिन सारे गोपियों के घाघरे जो है ऊपर करते हैं, उनके चरणों के दर्शन कराते हैं। राधा रानी के चरण के दर्शन भी होते हैं, एक राधाष्टमी के होते हैं और एक गोपाष्टमी के दिन होते हैं। सभी अष्ट सखियां भी पैर ऊपर करके भागते हैं देखने के लिए। तो ऐसा पवित्र दिन है, गोपियों के चरण कमलों का दर्शन भी उस दिन होता है। तो इसलिए हम सब लोगों को जब भी हम एकत्र होते हैं, कोई उत्सव होता है, जन्मगांठ होती है, शादी की सालगिरह होती है, कोई और कोई उत्सव होता है, गृह प्रवेश होता है, को भगवान को और उनकी लीलाओं को याद करना चाहिए, उनके विषय में स्मरण करना चाहिए, उनकी कथा को सुनना चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा को सुनने से हमारे भाग्य का उदय होता है, हमारे दुर्भाग्य का नाश होता है, हमारे बुरे कर्मों का नाश होता है और हमारे भाग्य का उदय होता है। हमारा भाग्य बनता है भगवान की कथा सुनने से, भाग्य नहीं होने पर भी भाग्य बनता है। और जो भगवान की कथा सुनता है और उसे भगवान की कथा के सुनने के लिए आकर्षण उत्पन्न होता है, रुचि उत्पन्न होती है, चाहत उत्पन्न होती है कि मुझे और सुनना है, वो व्यक्ति को बड़ा भाग्यशाली बताया है। क्योंकि जिसको भगवान की कथा सुनने में रुचि आ गई है वो इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेता। सुश्रुषो शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि, जिसको भगवान के बारे में रुचि उत्पन्न हो गई है कथा सुनने में, वो दोबारा दुनिया में जन्म लेता नहीं है कभी। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे दिव्य जन्म को और मेरे दिव्य कथाओं को, लीलाओं को समझता है, वो इस दुनिया में मरने के बाद में दोबारा जन्म नहीं लेता है। आसान हो गया ना आपके लिए, स्टोरी सुनना है आपको, बड़ा काम नहीं करना है, पहाड़ नहीं उठाना है, स्टोरी सुनना है मन लगाकर। ऐसा नहीं कि स्टोरी सुन रहे हो उधर शेयर मार्केट में क्या रेट हो रहा है उसका विचार कर रहे हैं, शुक्रवार को कौन सी फिल्म आने वाली है उसके बारे में विचार कर रहे हैं, कल जाके कौन सी दारू पीऊं उसका विचार कर रहे हैं। एकाग्रता से मन लगाकर दिल से जब भगवान की कथा हम सुनते हैं और उसके बारे में अट्रैक्शन पैदा करते हैं, अब हम लोग फिल्म की कहानी पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, प्रेम कहानी पढ़ते हैं, किसी किसी की दुख भरी प्रेम कहानी हेट होती है बहुत, नॉवेल कादंबरी। वैसे कथा पढ़ने से हमारा नरक में प्रगति होती है, लेकिन भगवान के विषय में सुनेंगे तो हमारी काम वासना नष्ट हो जाएगी, हमारे दिल की चाहत नष्ट हो जाएगी, दुनियादारी से मुक्त हो जाएंगे हम लोग, दुख से मुक्त हो जाएंगे, पाप फल से मुक्त हो जाएंगे, और भगवान के विषय में आकर्षण होने से भगवान के पास चले जाएंगे। और भगवान के पास कैसा होता है, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले, ऐसे भगवान के धाम में स्थिति है, वहाँ कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई काला नहीं है, कोई कलूटा नहीं है, सब सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, कोई कष्ट नहीं है, हाँ ऐसा पसीना नहीं आता है वहाँ पर बदबू वाला, कोई टॉयलेट नहीं है वहाँ पर, कोई गंदी नाली नहीं है, सब सुगंध ही सुगंध है, आनंद ही आनंद है, जो चाहे मौसम जैसे चाहे खड़ा हो जाता है अपनी सेवा में, कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई भीड़ नहीं है, हाँ कोई चीटिंग नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, ऐसे दुनिया में हमको प्रवेश मिलेगा भगवान की दया से। क्या करना है, केवल भगवान की कथा को बड़े प्रेम से सुनना है, और जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां जाना है। हमारे ऐसे बहुत दोस्त लोग थे बचपन में, जहां जहां फर्स्ट शो क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वहां जाते थे, उनका नियम था जहां नई फिल्म आ रही है वहां फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कुछ भी हो, फेवरेट हीरो हो या नहीं अच्छा हीरो हो, अपने को फर्स्ट शो देखना है, क्योंकि अट्रैक्शन हो गया ना उसको भी नई पिक्चर देखने का। दूसरा किसी के द्वारा कहानी सुनने के पहले मैं देख के आऊँगा और कहानी मैं बताऊँगा उस पिक्चर की स्टोरी क्या है, वैसे अट्रैक्शन भगवान के लिए होना चाहिए, राम लीला के लिए होना चाहिए, कृष्ण की लीला के लिए होना चाहिए, गौरांग महाप्रभु की, नरसिंह भगवान की, मत्स्य अवतार की, परशुराम की कथा के लिए होना चाहिए, वो सबसे पहला शो फर्स्ट शो हमको देखना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट रो पे बैठकर कथा सुननी चाहिए। ये इंसान की जिंदगी है, अगर भगवान की कथा के लिए रुचि नहीं है तो जानवर की जिंदगी होगी, जानवर को वो इंटरेस्ट नहीं होता है भगवान कथा में, वो खाली खाना खा मिलता वही देखता है, लेकिन इंसान के लिए मुमकिन है, भगवान की कथा सुनने का मौका भगवान ने दिया है हमको इसी जीवन में, और वो सुनने से हमारा जीवन पाप से पवित्रता की ओर बढ़ सकता है, बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ सकता है, दुख से सुख की ओर बढ़ सकता है, आपके चेहरे पर रौनक आएगी, ये बल्ब के प्रकाश से नहीं, अंदर से प्रकाश आएगी आपके अंदर, क्योंकि आत्मा जब भगवान से प्रेम करती है, भगवान पे मन लगता है उसका, भगवान में उसको रुचि आती है, तो चेहरे में भगवान की रौनक आती है, जैसे देवकी के अंदर जब भगवान ने प्रवेश किया आठवें गर्भ के रूप में, तो हजारों सूर्यों की तरह प्रकाशित हो गई वो, जेल के काल कोठड़ी में प्रकाश आ गया, तो कंस समझ गया कि मेरा काल आ गया है, अभी इतने अंधकार में काल कोठड़ी में भी इतना प्रकाश फैल रहा है, वो भी उसके पेट से फैल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके जीवन में भगवान ने प्रवेश कर लिया उसका जीवन प्रकाशित हो गया, दुख से मुक्त हो गया, संकट से मुक्त हो गया, और हम सब लोगों को ये मौका है, ये नहीं है कि अरे आप लोग तो संत लोग हो, आप तो भगवान के भक्त हो, इस्कॉन के डिवोटी हो, आप लोग तो कर सकते हो, कोई जन्म से इस्कॉन का डिवोटी नहीं था, जन्म तो कहीं लिया था एक जगह पर बाद में बने हैं, कोई जन्म से डॉक्टर नहीं था, बाद में स्कूल गया कॉलेज गया फिर डॉक्टर बन गया है, उसी तरह से हम लोगों को बनना है, चाहे कहीं भी हमारा जन्म हो गया हो, शूद्र के घर में हो गया, ब्राह्मण के घर में हो गया, पढ़े लिखे घर में हो गया कि अनपढ़ के घर पे हो गया, काले रंग के लोगों के घर में हो गया कि गोरे रंग के लोग में हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान की भक्ति होनी चाहिए, सही रौनक जो है मनुष्य जीवन में वो भगवान की भक्ति की वजह से होती है। हम कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितनी डिग्री हमारे पास है, कितने लाख रुपए जमा करके रखे हैं, कितने प्रॉपर्टी हमारी है, इससे हमारा गौरव नहीं बनता है, क्योंकि सारी चीज़ों को यहाँ पर छोड़ के जाना होता है, जो हमारे साथ जाता है वही हमारा रौनक का कारण होता है, हमने अगर ऐसा धन इकट्ठा किया है जो हमारे साथ जाएगा तब हमारी कीर्ति बढ़ती है, तब हमारा गौरव बढ़ता है, और दुनिया में ऐसा धन भी है जो हमारे साथ जा सकता है, वो है आत्मा का धन, वो है भक्ति का धन। सब धर्म में कहा है यही कि ऐसा धन इकट्ठा मत करो, समय ऐसे धन को इकट्ठा करने में बर्बाद मत करो जो धन को यही छोड़ के जाना ही पड़ेगा आपको। कितना भी बोलेंगे तो भाई कम से कम 1,00,000 रुपये लेके जाऊं, नहीं, एक फूटी कौड़ी भी यहाँ के आपको नहीं लेके जा सकते। ऐसा धन कमाने में जिंदगी वेस्ट मत करो, ऐसा धन कमाने में जिंदगी का समय लगाओ जो साथ में जाएगा आपके, और जहां आत्मा जाएगी वहां आत्मा का धन आत्मा के साथ जाएगा, और जहां जहां जाएगा वहां रोशनी देगा, प्रेम देगा, आनंद देगा और भगवत धाम तक पहुंचाएगा। अभी कल से कार्तिक मास शुरू हो रहा है, कल से हम लोग आज भी करेंगे, शुरुआत करेंगे कल के उपलक्ष्य में, और कल से रोज सुबह और शाम विष्णु और कृष्ण भगवान को दीपक दिखाएंगे। क्या करना है आपको, केवल घी में बाती बनाना है और भगवान की ओर 3 बार घुमाना है, बस, कम से कम 3 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते हैं आपने जीवन में ऐसे कितने दीपक जलाए हैं, उनका जो एकत्रित प्रकाश है वह आपको भगवान के धाम के जाने के रास्ते में प्रकाश देगा। आया समझ में आपको, समझो ये साल में आपने 60 दीपक दिखाए होंगे, 70 दिखाए होंगे, पिछले साल में 80 दिखाए होंगे, अगले साल 100 दिखाएंगे, दिन में 10 बार दिखाएंगे, जितने लाखों दीपक आपने घुमाए भगवान के ऊपर कितना प्रकाश होगा उसका, वो सारा प्रकाश आपको भगवान के धाम के रास्ते पर प्रकाश देगा। आपका यहाँ से भगवान के धाम जाने का रास्ता जो है रोशन होगा उसके वजह से। और एक दीपक, केवल एक बार एक दिन कार्तिक महीने में दीपक चलाने से आपके खरबों खरबों जन्मों के जितने पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। पाप नाम की वस्तु जो है वो कार्तिक के एक दीपक के सामने खड़ी नहीं हो सकती। कोई भी पाप का आप कल्पना करो वो इस दीपक के सामने खड़ा नहीं हो सकता, भाग जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। ये शक्ति है, करना क्या है, केवल घुमाना है, कुछ नहीं करना है, भक्ति भाव से उनको अर्पण करना है। घी का दीपक, घी नहीं है चलेगा, तेल का दीपक लगाओ, लेकिन भेम प्रेम जो है हमारा दीपक, हृदय का जो प्रेम है उसके साथ उसको भगवान को अर्पण करो, स्वार्थ से नहीं प्रेम से अर्पण करो। ये भगवान का ना बड़ा ग्रैंड सेल है, ये भगवान बड़े दयालु है, ऐसा महीना बना देते, ये महीने में जो भी कुछ करेगा 1,000 गुना लाभ मिलेगा उसको, 1,000 गुना। अगर हरे कृष्णा 1 बार बोलेगा तो 1,000 बार बोलने का लाभ मिलेगा उसको, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट भगवान ने बहुत आसान बना दिया है कार्तिक महीने में। और ये महीना राधा रानी को बड़ा प्रिय है, ये महीने में आपने किए हुए भक्ति के कार्य को राधा रानी फल देती है, इसलिए उसको ऊर्जा देवी का महीना कहा गया है। ऊर्जा मतलब राधा रानी, नाम दामोदर मास है, लेकिन दामोदर मास में किए हुए भक्ति का फल राधा रानी देती है, बड़ी दयालु है वो, दुकान दया का दुकान खोल के बैठी हुई है, हे दया की देवी सब पर दया देती है। हमको केवल थोड़ा बहुत पाप कर्म छोड़ देना है और भगवान को दीपक चलाना है, उनका नाम का जप करना है, हो सके तो ब्राह्मणों को दान देना है, हो सके तो भगवद गीता पढ़नी है, हो सके तो 2-4 दिन भगवान के धाम में तीर्थ यात्रा करके आना है, चाहे वृंदावन है, मथुरा है, नासिक है, और कहीं नहीं तो बाण गंगा मलबार हिल पे जहाँ भगवान ने बाण मारा था, जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ जाकर नमस्कार करके आना है, कहीं नहीं तो मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करके आना है, एक दीपक चलाना है। ये महीने में सब भक्त लोग यात्रा करते हैं और साथ में एक पैकेट रखते हैं, उसके अंदर क्या, एक लैंप, कई सारी बातियाँ घी में डुबाई हुई, एक माचिस रखते हैं, जहाँ भी गए तुरंत खोलते हैं, लाइटर जलाते हैं, दीपक जला के भगवान को अर्पण करते हैं, जितनी जगह जाते हैं वहाँ पर दीपक खोल के लगाते हैं। उनको मालूम है एक दीपक की कितनी शक्ति है इस महीने में, तो ऐसा दीपदान का ये बहुत सुंदर महोत्सव है, इसमें दीपावली भी आती है, इसमें सब लोग हमारे मंदिर में दामोदर अष्टक गाते हैं और भगवान को दीपक अर्पण करते हैं, बहुत उत्सव, बहुत लुभावना होता है। इस महीने के आखिरी दिन में आखिरी बार दीपक जलाते हुए बहुत दुख होता है कि अगली बार अभी 1 साल रुकना पड़ेगा उसके लिए, 11 महीने के बाद में आएगा, लेकिन वो आ गया है, कल से शुरू होने वाला है। शरद पूर्णिमा के दिन से हम लोग बचपन में शरद पूर्णिमा के दिन पतंग उड़ाते थे और पतंग को दीपक लैंप लगाकर छोड़ते थे आकाश में, थोड़ा आकाश में गया तो फिर एक कंदील लगाया, तो दीपक जलाया छोड़ दिया, फिर आगे गया और एक लगाया छोड़ दिया, तो आकाश में ऐसी लाइन लगती थी दीपकों की। फिर फ्रेंड भी चलाएगा उसका भी दीपक का लाइन लगेगा, हमारा भी चलेगा, तो बहुत देर तक चलाते थे फिर उतारते थे उसको। आकाश में भी दीपक चलाने से इसमें बहुत लाभ होता है, इस महीने में मजा भी हो रहा है, आनंद भी आ रहा है, और आकाश में भगवान के लिए हम दीपक जला रहे हैं, उनके आनंद के लिए। भाव क्या है? मेरी मजा के लिए नहीं, उनके आनंद के लिए जला रहे हैं। हमारे मायापुर के मंदिर में, वृंदावन के मंदिर में लाखों लाखों दीपों का प्रज्वलन करते हैं, दीपों की लाइन लगाते हैं पूरे सब बॉर्डर पे, सब जीने में, इधर उधर सब जगह पे। दीप जो है बहुत पवित्र माना गया है, दीप जो है बहुत बड़ी अच्छी पुण्य शक्ति को उत्पन्न करता है, दीपक ज्योति जो होती है ना वो जीवन में बहुत लाभकारी होती है। इसलिए हम सबको इस महीने में ऐसे बोलते हैं, खुद को बेचकर दीपक भगवान को अर्पण करना चाहिए। अगर इतनी गरीबी आपके जीवन, समझो जीवन में गरीबी है, खुद को बेच भर भी एक दीपक खरीद के भगवान को अर्पण करना चाहिए, इतना महत्व है इसमें। मेरा विश्वास है कि हम लोग इतने गरीब नहीं है, हमारे पास एक पंक्ति लेने का तो पैसा है, एक ही पंक्ति लो, 30 बाती खरीदो, एक ही बार डुबा दो उसको, चाहे तो निचोड़ दो उसको डुबाने के बाद, एक एक लगाओ उसी पंक्ति को, वापस दोबारा यूज करो, पाती को निकालो अर्पण करो, वो पंक्ति रखो, दूसरी दीप लगाओ उसको, उसमें अगले दिन लगाओ। तो अगर इतनी गरीबी है तो की बात कर रहा हूँ मैं, इतना तो कर ही सकते हम लोग। इतना करने से हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो भगवान ने बहुत लीला किया है, हम लोग इस पूरे महीने में भगवान की कथा सुनते हैं, कुछ लोग भागवत का पारायण करते हैं, भागवत कथा रखते हैं, कुछ लोग भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं, कुछ लोग रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ भगवान को घर में मंदिर में दीपक लगाते हैं, संतों को बुलाते हैं, व्रत करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, नदी में स्नान करते हैं, पवित्र स्थान में जाते हैं, वहाँ की कथा सुनते हैं, दर्शन करते हैं, सब पवित्र कार्य करते हैं, जितना हो सके उतना का पवित्र कार्य करते हैं। और कुछ नियम लेते हैं कि अगर मैं दिन में 2 घंटा जप करता हूँ तो कार्तिक महीने में 2 घंटा 15 मिनट जप करूँगा, एक्स्ट्रा 15 मिनट करूँगा। अगर रोज गीता नहीं पढ़ता हूँ, कार्तिक महीने में 1 श्लोक पढ़ूंगा रोज, रोज पढ़ने को समय नहीं मिलता, कार्तिक महीने में 1 कहानी भगवान की पढ़ूंगा रोज। ऐसा करने से बहुत दिव्य लाभ होता है। जो कार्तिक में व्रत करता है, एक बार भी करेगा कार्तिक महीने में व्रत करेगा, वो सीधे भगवान के धाम में पहुंचेगा। एक बार भी, एक महीना लाइफ में जितने साल जीते हम लोग, उसमें से 1 साल भी हम लोग व्रत करेंगे कार्तिक महीने का, तो उस 1 महीने के व्रत से हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। और भगवान को क्या करना चाहिए बताओ, इतना आसान कर दिया हमारे लिए, फिर भी हमको इंटरेस्ट नहीं, तो क्या कर सकते हैं? रहो इधर ही, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा सहते रहो, और क्या करें? इतना आसान बना दिया है उनको मिलना, तो हमको जंप करना चाहिए उसके ऊपर। अरे पहले तो बहुत महंगा था, अभी सस्ता हो गया, तुरंत ले लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग एक बार पुकारो, हृदय से पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।